ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुसांस्कृतिक देश में रहते हुए सबसे अधिक संभावना रहती है ऐसे लोगों से मिलना या उनसे दोस्ती करना जो एक अलग धर्म या संस्कृति के हों। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है, तभी तो एक सामंजस्यपूर्ण समाज की रचना हो पाती है। इन्हीं प्रथाओं में से एक है धार्मिक उपवास, जो कई अलग अलग धर्मों द्वारा अपनाया जाता है। सेटलमेंट गाइड की इस कड़ी में बात आज इस विषय पर कि धार्मिक उपवास शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और क्या इसके कोई लाभ हो सकते हैं। खाने पीने से पूरी तरह से परहेज करना हो या हल्का खाना हो, कम कैलोरी वाला रूप हो, ये ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म सहित विभिन्न धर्मों और दर्शनों में इस तरह की उपवास की बात तो आती है। डायना अबेल रहमान OAM ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम वॉइस रेडियो की अध्यक्ष हैं, जो कैनबरा में एक अंग्रेजी भाषा का कार्यक्रम है और रमजान के दौरान 24 घंटे प्रसारित होता है। सुश्री अब्देल रहमान बताती हैं कि रमजान मुसलमानों के लिए ईश्वर और अपने धर्म के साथ फिर से जुड़ने का समय है।
As the sun comes up, that's when we stop eating. We do not eat or drink during the day until the sun goes down, which is the fourth prayer of the day. This happens for 29-30 days in the month of Ramadan every year. Fasting actually benefits the body, mind, and soul. During the month of Ramadan also, you often increase your prayers. It's a chance where everybody gets to reconnect with God. It's a chance where we get to drop everything else that we're doing and completely focus on our faith.
रमजान रुक रुक कर उपवास का एक रूप है, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाने के पैटर्न जिसमें आवर्ती आधार पर 12 घंटे से लेकर कई दिनों की अवधि के लिए कुछ भी नहीं या कुछ कैलोरी का सेवन किया जाता है। अधिक विशेष रूप से रमजान समय प्रतिबंधित भोजन की श्रेणी में आता है। डॉक्टर वेरोनिक चेचे, जो क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में एक मान्यता प्राप्त अभ्यास आहार विशेषज्ञ, एक व्याख्याता और शोधकर्ता हैं, वो बताती हैं कि सीमित समय के लिए पूरी तरह से भोजन से परहेज करने से शरीर को कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। उपवास के दौरान कुछ ऐसे जीन सक्रिय होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के एंजाइम्स के कोड के लिए जाने जाते हैं।
During a window of fasting, you are triggering the mechanism at a molecular level, is triggering the resilience mechanisms in the cell. So the cell switches into a stress response, and that mild stressor, we say mild because it's not for too long, will activate certain genes that are known to code for enzymes for detoxification. So for example, antioxidant enzymes are increased. Increasing detoxification enzymes that are in the liver, and so as a result, the cell is doing a bit of spring cleaning.
यहूदी भी मुसलमानों की तरह वर्ष के दौरान कई बार खाने पीने से पूरी तरह से परहेज करते हैं, जिसमें पानी भी शामिल है। हालांकि पानी से परहेज करने का कोई फायदा तो नहीं हुआ है। सुश्री चाची कहती हैं कि अगर कुछ भी हो तो पानी पीने से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। वो कहती हैं जब लोग उपवास कर रहे होते हैं तो ऑटोफेगी नामक एक प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों से प्रेरित होती है।
The cell, it's recycling what it can. So old organelles, which are those particles within the cells, which are old, this is being recycled. So it's recycling what you can keep. So maybe amino acids that can be recycled. And it's promoting what we call the principle of autophagy, auto, self. Phagy means eating, so eating itself, so basically cleaning itself, eating away its waste product. And these mechanisms are then associated with better outcomes over time because you're reducing cellular waste, you're reducing toxins, you're increasing the ability of detoxifying. So the end result is kind of regenerating process.
डॉक्टर चर्चे कहती हैं कि जब किसी उपवास के बाद दोबारा खाया जाता है तो कोशिकाएं पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में सक्षम होती हैं।
And then when the person starts feeding again, then that switching from the fasting to the feeding in itself is also a beneficial effect because the cell has been deprived of certain nutrients and then suddenly these nutrients come in and it's making the maximum of these nutrients. It's not being wasted, it's not in surplus, it's being used for the optimal function of the cells.
उनका कहना है कि स्वस्थ खाना महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे इंसुलिन में वृद्धि होगी और यहाँ तक कि समय के साथ इंसुलिन प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा जो बहुत ही हानिकारक है। अब कुछ धर्मों या संस्कृतियों में उपवास में पूरी तरह से भोजन से दूर रहना शामिल नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित अवधि के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना शामिल है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के लिए उपवास हल्के प्रतिबंध से लेकर अत्यधिक परहेज तक हो सकता है। हालांकि हिंदू धर्म में उपवास एक दायित्व नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक कार्य है, जिसका उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना है। कैथोलिक लैंड के दौरान शुक्रवार को मांस नहीं खाया जाता, जबकि ग्रीक रूढ़िवादी ईसाई अधिकतर डेयरी उत्पादकों, अंडे और मांस से दूर रहते हैं और कभी कभी जैतून का तेल और मछली से भी, साल में कुल 180 से 200 दिनों तक के लिए। डॉक्टर चैचे का कहना है कि इस तरह का उपवास कैलोरी प्रतिबंधित आहार की श्रेणी में फिट बैठता है। इस सिद्धांत पर आधारित एक आधुनिक आहार क्रोन डाइट यानी CRON कैलोरी रिस्ट्रिक्शन प्रैक्टिस ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, जिसमें स्वास्थ्य और ढलती उम्र के प्रयास में कैलोरी प्रतिबंध शामिल है, लेकिन साथ ही विभिन्न पोषक तत्वों की अनुशंसित दैनिक मात्रा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।
The idea here is to put the body into a mild stress. That means the body learns to do the most of what he has or of what it is receiving. And obviously all the conditions that are associated with excess fatty tissue in the body. So, you know, mild inflammation, which are all precursors of chronic disease as well. So this does not take place. And because those genes are stimulated a bit less than when you're fasting completely, but still a little bit. So again, the idea is a better antioxidant defense. So that means the ability of the body to really clean up free radicals, toxins, and so on. And the overall effect out of that is that it will slow down the aging process.
आंतरायिक उपवासों के कुछ लोकप्रिय संस्करणों में 5:2 आहार शामिल है, जिसमें सप्ताह में दो बार, एक बार में 500 से अधिक कैलोरी नहीं खाना शामिल है। डॉक्टर वॉल्टर लोंगो द्वारा तैयार किया गया एक और वैज्ञानिक रूप से समर्थित योजना फास्टिक मिमिकिंग आधार है। डॉक्टर चेचे का कहना है कि इस तरह का उपवास हार्मोन को रीसेट करने में मदद कर सकता है, साथ ही सेल नवीनीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
What the Longo group demonstrated is that you don't need to go to zero calorie to have the benefits of fasting. Even just dropping at least to half what you would do normally, you're still inducing the benefits. And so the fasting mimicking diet is a diet where there's drop in calorie, but there's also a drop in the percentage of protein being consumed. And this protocol is recommended to be done 1 to 3 times per year, these 5 days, for the purpose of basically resetting those hormones that shouldn't be at high level, but also to promote the autophagy, the cell renewal, the upregulation of antioxidant enzymes.
उनका कहना है कि कम वजन वाले लोगों के लिए या पहले से कोई बीमारी है या वो चीनी खाने की बीमारी है, उनके लिए उपवास की सिफारिश नहीं की जाती है। एडमा कोंडा कैनबरा इस्लामिक सेंटर में इमाम है। उनका कहना है कि रमजान के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों से रोजे रखने की उम्मीद नहीं की जाती है।
A child is not to fast because children need to eat. Also, a traveler also they don't have to fast. They can make it up when they arrive home. Also, elderly people they don't have to fast either. And also when women are pregnant or breastfeeding, also they don't have to. So fasting, consider our physical ability to do it. If you are physically not able to do it, you are not allowed to do it anymore. That becomes another wrong thing you do.
स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर संतुलित आहार लेने के महत्व पर जोर देते हैं और एक नई आहार व्यवस्था शुरू करने से पहले एक जीपी या आहार विशेषज्ञ से बात करने की सलाह देते हैं।